घासीराम कोतवाल विजय तेंदुलकर द्वारा रचित एक मराठी नाटक है। इसका अनुवाद हिंदी में वसंत देव ने किया है। लेखक का वक्तव्य। घासीराम कोतवाल ऐतिहासिक नाटक नहीं है, वह एक नाटक है, सिर्फ नाटक। नाटक सिर्फ नाटक ही होता है। एक साहित्यिक कलाकृति के संदर्भ में यह कहना कि वह ऐतिहासिक है या पौराणिक है या सामाजिक है बेमानी है। समय बहुत जल्दी सामाजिक को ऐतिहासिक और ऐतिहासिक को पौराणिक बना देता है। फिर भी इस नाटक की सामग्री कच्चा मसाला इतिहास से बटोरी गई है। इतिहास का क्षीण सा आधार अवश्य लिया गया है, पर इसके आगे नाटक का इतिहास से कोई संबंध नहीं है। और यह कच्चा मसाला भी ठीक उसी तरह इतिहास से लिया गया है जिस तरह समसामयिक जीवन स्थितियों से भी लिया जाता है। महाराष्ट्र में पेशवाओं का राज था। नाना फडणवीस पेशवा के प्रधान थे। कोई एक घासीराम था, ब्राह्मण थे, मराठा सरदार थे, और ये सब इकाइयां अपने अपने दायरे में बंधी समय के प्रवाह में लकड़ी के लट्ठे की भांति कभी सटकर तो कभी हटकर, कभी परस्पर को छूती तो कभी टकराती, अप्रतिहत प्रवाहित हो रही थी। उनका यह कार्यकरण उचित था या अनुचित, या उनका मूलभूत अस्तित्व सार्थकता युक्त था अथवा नहीं, इसकी खोजबीन करना इतिहास का शोध करने वाले व्यक्ति का काम हो सकता है, नाटककार का नहीं। मैं इसी कारण घासीराम कोतवाल को अनैतिहासिक मानता हूँ। घासीराम कोतवाल एक किंवदंती, एक जनश्रुति, एक दंत कथा है, और दंत कथा का एक अपना रचना विधान होता है। जीने यथार्थ को जब हम अपनी नैतिकता से रंजित कर कल्पना की सहायता से पुनर्जीवित करते हैं तो एक दंत कथा बन जाती है। दंत कथा गप भी है और देखने की दृष्टि हो तो एक दाहक अनुभव भी। दाहक अनुभव ही रचनात्मक साहित्य बन जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु दंतकथा क्या होती है और कैसी होती है, इससे ज़्यादा महत्व की बात यह है कि हम उसे किस तरह लेते हैं, क्योंकि तभी हम अपनी जांच पड़ताल करते हैं। जाहिर है कि यही काम सबसे मुश्किल होता है, एक गहरी चुनौती है वह, उसे स्वीकारना, अपनी साहित्य निष्ठा का परिचय देना है। मेरी निगाह में घासीराम कोतवाल एक विशिष्ट समाज स्थिति की ओर संकेत करता है। वह समाज स्थिति न पुरानी है और न नई, न वह किसी भौगोलिक सीमा रेखा में बंधी है और न समय से ही। वह स्थल कालातीत है, इसलिए घासीराम और नाना फडणवीस भी स्थल कालातीत है। समाज स्थितियां उन्हें जन्म देती हैं, देती रहेंगी। किसी भी युग का नाटककार उनसे अछूता नहीं रह पाएगा। अपनी प्रकृति के अनुसार वह कभी भव्य भीषण रूप देकर उन्हें मंच पर उतारेगा, तो कभी नृत्य संगीतमय बनाकर प्रस्तुत करेगा। मैंने जानबूझकर दूसरी रीति अपनाई है। लोक नाट्य का लचीलापन विख्यात है और दंत कथा के प्रस्तुतिकरण के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। उसमें एक पात्र विशिष्ट मनोवृत्ति का प्रतिनिधि बनकर उभरता है और वह मनोवृत्ति एकदम प्रत्यक्ष तथा परिपूर्ण और अमिश्रित होती है। सतही संश्लिष्टता के रहते हुए भी वह आम दर्शक के सामने बराबर उजागर होकर रहती है। इसके अतिरिक्त उसका अपना एक भदेशपन भी होता है जो भाषा और तमाशा के स्तरों पर स्वयंमेव अवतीर्ण होता है। लोक नाट्य की इस विशिष्टता को मैं क्यों छोड़ देता, लेकिन रचनाकार को अपनी रचना के विषय में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। रचना स्वयं बोलती है और वही सत्य है।